बिस्मिल्लाह कीजिए।
सर मैं वो शरा रुहुल कुरान पढ़ रही थी तो उसमें बताया गया है ना कि शख्स अकबर और शख्स असगर और नस्मा। शख्स अकबर जो है वो तजल्ली का जिस्म है, और शख्स असगर जो है वो नूर का जिस्म है, और नस्मा रोशनी का जिस्म है।
जी हाँ
तो सर जब हम सोते हैं तो नस्मा तो एक्टिव हो जाता है, तो
ठीक।
ये तजल्ली और नूर का जिस्म कब एक्टिव होता है?
ये जब आप अपने रोशनी के नस्मा से वाकिफ हो जाएंगे ना, जैसे हम मादी जिस्म से और नस्मा से वाकिफ हैं, ये दोनों आपस में अदलते बदलते रहते हैं। जब हम जाग रहे होते हैं तो हम मादी जिस्म से आशना होते हैं, जब हम सो जाते हैं तो हम नस्मा से मुतारिफ होते हैं या उससे काम ले रहे होते हैं, ठीक है। जब हम नस्मा से इस तरह मुतारिफ होंगे जैसे हम इस मादी जिस्म से, आज ये हजूर मुर्शिद करीम ने जो बस आज की बात है ना मई की, इसको जरा समाज फरमाएंगे तो ये वाजे हो जाएगा कि इंसान मुख्तलिफ परतों का मजमू है। तो जिस जिस परत पे आपका शऊर काम करेगा, लाशौरी तौर पे तो ये सारे ही परत काम कर रहे हैं। क्या कहा? लाशौरी तौर पे हमारे अंदर ये सारे परत काम कर रहे हैं, तजल्ली का भी, नूर का भी, रोशनियों का भी, नस्मा का भी और मादी जिस्म भी, ठीक हो गया। लेकिन हमने इनका शऊर हासिल करना है, इस शऊर को हासिल करने के लिए ही तो हमें ये मुराकबे तजवीज़ किए जाते हैं कि जी आप तसव्वुरे शेख का मुराकबा करें ताकि हमें उनकी तर्ज़ फ़िक्र मुंतकिल हो, ताकि हमें उनका जहन मुंतकिल हो, फिर उनकी सलाहियतें मुंतकिल हो, फिर उनका इल्म मुंतकिल हो। तो असल में यही बात कही जा रही है कि जब हम ये मुसलसल तसव्वुरे शेख करते हैं तो हमें मुर्शिदे करीम की जब सलाहियतें हमारे अंदर ऊद करती हैं। देखे ना, बच्चा माँ को देखता है तो रोटी खाना सीखता है, माँ उसे खिलाती रहती है लुकमा लुकमा करके, वरना उसे क्या पता कि रोटी क्या है, सालन क्या है, निवाला कैसे बनाना है। तो ये शौरी काविशें करनी पड़ती हैं, और उसके लिए जाहिर है कि हमें जागते में नींद के हवासदारी करने की मशक है, जिसे मुराकबा कहते हैं। इसी को मैं कहता हूँ ना कि मुराकबा तो अपने साथ बैठने का अमल है। आप अपने साथ बैठेंगे तो अपने इन दर्जात से वाकिफ होंगे ना, वक्त देने की बात है। अभी तो देखे ना, आप अपने नस्मा पे कोई कंट्रोल नहीं रखते, ख्वाब देखते हैं वो गैर इरादी, गैर इख्तियारी और गैर शौरी होता है। कुछ नज़र याद, मतलब कुछ जो नज़र पड़ती है उसमें से कुछ हिस्सा याद रह जाता है। पहले तो ये होगा कि रफ्ता रफ्ता आपका हाफ़ज़ा इतना तवाना होगा कि जब आप ख्वाब देखेंगे वो याद रहना शुरू होंगे, फिर आप मर्जी के ख्वाब देखना सीखेंगे, यानी वहां पे अपनी मर्जी चला सकेंगे, यानी अपने शौरी तौर पे, इख्तियारी तौर पे, इरादी तौर पे हरकत कर सकेंगे। फिर उसके बाद बारी आएगी कि आप नूर के जिस्म से, तजल्लियों के जिस्म से आशना होते चले जाएं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये लगातार लगे रहने का अमल है। मैं आपको एक मिसाल इस पे अर्ज कर देता हूँ, आप गौर करें कि हजूर ने सलाम की शादी जो है वो 25 साल की उम्र में हुई, नबूवत उन्हें 40 साल की उम्र में मिली, मेराज 49 साल की उम्र में हुई। यानी तारीख खामोश है कि वो 25 से 40 साल क्या करते रहे। मैक्सिमम हमें ये पता चलता है कि वो गारे हिरा में चले जाते थे, गौर करें, वहां दो दो तीन तीन दिन का राशन साथ ले जाते थे, और वो वहां अकेले 24 घंटे नहीं, 48 घंटे नहीं, 72 72 घंटे बैठे हुए। आप और हम कितना वक्त देते हैं? और इस तरह वो 15 साल करते रहे तो जिब्राइल आए, फिर मजीद वो यही कुछ करते रहे तो 9 साल बाद, मजीद 9 साल लगे उनको ताकि वो मुकाम महमूद तक पहुंच सके। अब देखे ना, हम ये काम सुनते तो हैं, माशाल्लाह आपने दाखिला भी ले लिया सिलसिले में, अब हम पढ़ना भी शुरू कर दिया, लेकिन जिस चीज को घंटों देने हैं उसको हम 10-15 मिनट देते हैं, तो उसी रफ्तार से तरक्की होगी फिर। अब हजूर मुर्शिदे करीम ने तो इससे आशना करने का बड़ा सिंपल कर दिया कि भाई या कयूम का विर्द करो ताकि आपका जहन अल्लाह की तरफ, अल्लाह की सिफत हयात और सिफत कयाम की तरफ लगा रहे, और साथ में आपको कहा कि तसव्वुर शेख का मुराकबा करो, आपने किताबों में पढ़ा या आपको 10-15 मिनट का या 20 मिनट का या मैक्सिमम आधे घंटे का बताया गया। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आधे घंटे से काम नहीं चलेगा, इसकी मुद्दत को बढ़ाएंगे जितनी ज्यादा मशक होगी, लेकिन वही बात है, हम फारग ही नहीं है, तो जब हम फारग नहीं है तो अल्लाह मियाँ के पास बड़ा वक्त है। अल्लाह मियाँ कहते हैं कोई बात नहीं, जब तुम फारग हो गए मैं हाजिर हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम।
जी सर, क्या हाल चाल है आप?
अल्लाह का इनाम।
सर ये जो आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं मुराकबे की, ये असल में 15 से 20 मिनट या 30 मिनट जो है ये इब्तदाई लोगों के लिए है।
बिल्कुल सही, मतलब है पहले तो आहिस्ता आहिस्ता दिया, पहले आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को पसमाया जाता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता
इतने सालों से तो जो इतने सालों से जो है सिलसिले में है, तो वो जो है अभी भी पहली क्लास वाला ही मुराद बन जाता
है। बस वो तवज्जो नहीं किसी ने दिलाई ना, अल्लाह ने करम किया, मेरा मुर्शिद करीम ने मेरे जरिए ये मतवजो करना शुरू कर दिया, मैंने लोगों से कहना शुरू कर दिया। अब जो वक्त देगा, जाहिर है कि जो वक्त देगा फायदा उसी का है, इसमें जाहिर है ना मुर्शिद का कोई फायदा है ना मेरा कोई फायदा है।
अब्बा जान ने जो है किताब मुराकबा के अंदर जो है एक एक घंटे का कहा है कि सब जो है निगाह जो है वो,
जी हाँ कम अज कम एक घंटा तो दे ना। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम।
अब जो आपने कहा है मुराकबे के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक किताब पढ़ी थी रब से जुड़ने का सफर। उन्होंने तो मना किया मुराकबे का कि हमारा जो माइंड है वो सुपर कंप्यूटर है और उसको छेड़ना नहीं चाहिए।
बात ये है कि आप मानते किसको हैं, आप मानते किसको, जिसकी मानते हैं उसकी बात पे अमल कर लें। आप उनको मानते हैं तो वो सही कह रहे हैं, अगर आप मुर्शिद करीम को मानते हैं तो उनकी बात मान लें। अल्लाह अल्लाह खैर सर, मैंने आपको दलील के साथ बात की है, मैंने आपको हजूर अलैहिस्सलाम की हयात अक्दस से मिसाल दे के अर्ज किया है कि 24 साल अगर एक चुने हुए बंदे को इतना वक्त लगाना पड़ता है, तो मैं और आप किस खेत की मूली हैं।
आप तो
बात यह है जी, बात मानने की है, गल है मनन दी, ठीक है ना। आप उनकी मान के वो मेरी, अगर मेरी बात आप उनको सुनाएंगे तो वो नहीं मानेंगे, इसी तरह जाहिर है कि अगर वो कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगा, मैं मेरा अपना जहन है, उनका अपना जहन है।
देखिए मैं आपसे तो अभी मुखातिब हूँ, लेकिन मैंने उनसे काफी बहस की थी और यही
ये बातें बहस की तो है ही नहीं जी, बात ये है ये सारी बातें बहस की नहीं है, समझने समझाने में बहस नहीं होती।
अच्छा ठीक है,
देखे ना अगर आप मुझसे कोई बात समझना चाहते हैं और मैं आपसे बहस करूं तो वो गलत हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं मुराकबा से शुरू कर देती हूँ।
अल्लाह आपको हिम्मत दे, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। देखिए मैंने आपको एक अकली दलील अर्ज की है, एक अकली दलील से बात की है, और सबसे कायनात की सबसे बड़ी हस्ती का तस्करा करके की है। दिल मानता है, अकल मानती है, تو اس پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے فائدہ کس کا ہوگا، اگر میرا ہے تو پھر مت کیجئے.
نہیں نہیں بالکل ان شاء اللہ میں شروع کر دوں گی. اس کی تو کوئی ٹائمنگ وغیرہ تو نہیں ہے نا، کسی بھی ٹائم رات کو کر سکتے ہیں.
میں کہتا ہوں جی تصور شیخ کا مراقبہ تو آپ چلتے پھرتے کھلی آنکھوں سے بھی کر سکتے ہیں، گھر کا کام کاج کرتے ہوئے دھیان. دیکھیں نا وہ ایک محاورہ ہے، ضرب المثل ہے، کیا محاورہ ہے، دست بکار دل بیار، یعنی فارسی کا یہ شعر ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ کام میں لگا ہوا ہے اور دھیان جو ہے وہ اللہ میں لگا ہوا ہے. سارا کھیل تو یہ دھیان کا ہے نا، آپ اللہ کے کتنے قریب ہونا چاہتے ہیں اتنی زیادہ سوچیں گے اس کو.
جی
میں عرض کر دیتا ہوں، آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ جی آپ یہ آنکھیں بند کر کے دیکھیں کہ آپ کے سامنے مرشد کریم بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، آپ یہ تصور جمائیں کہ آپ خود بنفس نفیس آپ ابا ہیں، یعنی آپ اپنے مرشد کو اپنے اوپر حاوی اور طاری کرنا سیکھیں. آپ یہ محسوس کریں کہ اچھا اگر یہ جی جی تو پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں، میں آپ کو ایک، آپ مجھے اگر واٹس اپ کر دیں تو میں آپ کو ایک مراقبہ ہے، مراقبہ گل، ٹھیک ہے، وہ اس کی ایک آڈیو اور ایک ویڈیو بھیج دیتا ہوں، اس کے مطابق آپ کو ایک آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنا ہوگا، آدھا گھنٹہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر آپ کا ذہن بن جائے گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات آپ کو کلیئر بتا دوں رابع جی، میں نے آپ کو اپنی وہ دکھائی تھی، سمجھو 30 سال ہو گئے میں نے فارم فل کیا تھا بال جنگ میں پڑھ کے، اور انہوں نے وہاں سے سائن ہو کے بھی آیا تھا میرے پاس، اور اسی حساب سے میں اخبار میں پڑھ کے یہ مراقبے وغیرہ کر دی تھی. مجھے ڈائریکٹ کسی نے نہیں بتایا تھا، جب یاد بتایا جا رہا ہے.
مطلب یہ کہ اگر آپ یہ بیت فارم آج سے 30 سال پہلے بھر چکے ہیں، وہاں سے جواب بھی آ گیا تو بیت تو ہو چکی ہے، ٹھیک ہے
جی، بالکل
بات واضح ہو گئی نا. تو اب آپ نے تصور شیخ کا مراقبہ جو میں عرض کر رہا تھا یہ ذرا دوبارہ سماعت فرما لیجیے، ساتھ میں اگر آپ یہ اپنے مراقبے کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ کرنا چاہیں تو یہ مراقبہ گل جو میں تجویز کر رہا ہوں یہ کر مجھ سے لے لیجئے، ٹھیک ہے. مراقبہ تصور جی آپ میرے نمبر پہ ان باکس میں یہ لکھ کے نا کہ مراقبہ گل بھیج دیں تو اس کا طریقہ تو وہ میں عرض کر دوں. تو ابھی جو ہے وہ میں تصور شیخ کو واضح کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. تصور شیخ کا مراقبہ اصل میں یوں کیا جاتا ہے کہ ہم نقل کرتے ہیں مرشد کریم کی اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ابا ہیں. کیا آپ یہ تصور جمائیں کہ میں ابا ہوں تو کیا ہوگا، رفتہ رفتہ آپ کی شخصیت ان کی شخصیت کا اثر قبول کرے گی، ان کی طرز فکر آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائے گی، رفتہ رفتہ ان کا ذہن منتقل ہوگا، پھر رفتہ رفتہ مزید آپ لگے رہیں گے تو ان کی صلاحیتیں آپ کے اندر منتقل ہوں گی یا پیدا ہوں گی، پھر ان کا علم منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کا جب ذہنی ارتباط مرشد کریم سے قائم ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے ذہن کی حرکت کے ساتھ آپ کا ذہن ہلے گا. اب میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ ہر وقت ہما وقت کر سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ تو وہ رسمن بیٹھنا ہے نا، اخلاقن بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے کام کرتے ہوئے بھی تصور کر سکتے ہیں کہ بھی ابا یوں چلتے ہیں، یوں بیٹھتے ہیں، یہ کہتے ہیں، آپ نے ان کی تحریریں پڑھی ہیں، ان کی ویڈیو سنی ہیں، ان کے جملے ذہن میں دہراتے رہیں، بس یہی مراقبہ ہے اور کیا. ٹھیک ہو گیا نا
جی؟ جی بہت بہت شکریہ، ویلکم. تھوڑا سا پتہ چلا ہے
انشاءاللہ. आप दिलचस्पी ली तो आप में पता चलना शुरू हो गया ना जी, सारा खेल तो आपकी दिलचस्पी लेने का है।
नहीं मैं जाती नहीं हूँ, मुराकबा करती रही हूँ कई सालों तक, मुराकबा देना आपशा में
जी जी,
और बहुत
अच्छा
उन्होंने मेरी हेल्प की है, उनको अपना फॉर्म वगैरह भी दिखाया था।
सही, बहुत खुशी हुई जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी इस दिलचस्पी के लिए मैं आपका शुक्र गुजार हूँ, अल्लाह आपको खुश रखे जी। और कोई?
मैं आप लोगों का शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग मुझे टाइम दे रहे हैं।
जी जनाब।
हेलो
जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
अस्सलाम।
डॉक्टर अस्मा पे आ जाए, मुझे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हम जब तक इल्मुल अस्मा नहीं सीखेंगे हमारे पल्ले कुछ नहीं आएगा, हम बिल्कुल नाकाम इंसान हैं।
अल्लाह
इल्मुल अस्मा को कैसे हम
सीखेंगे? मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखें अल्लाह रब करीम ने इंसान को कौन कहा, सारी रूहें पैदा हो गई ठीक है, उसके बाद हजरत इंसान की रूह को पकड़ा और नफख तो फीहे मिन रूही, इंसान के अंदर अपनी रूह में से कुछ फूंका, यानी इसको स्पेशल बना दिया। आम रूहों से ये इसलिए अलग हो गया क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की रूह में से कुछ फूंका गया, यानी कुछ स्पेशल सलाहियतें फूंकी गई। अब वो स्पेशल सलाहियतें क्या हैं? मैंने हजूर मुर्शिद करीम से ये सवाल पूछा, उन्होंने फरमाया कि भाई गौर व फिक्र करने की सलाहियत इंसान को अता की गई। और करें, किसी और जानदार को है? क्यों जी?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
अब ये गौर व फिक्र की सलाहियतों के इस्तेमाल का तरीका जो है उसको इल्मुल अस्मा कहा, यानी ये जो आपके अंदर अल्लाह ने सलाहियतें रखी उन सलाहियतों के इस्तेमाल का तरीका भी तो बताना था ना, तो वो जो इल्म अता किया उस इल्म का नाम रखा इल्मुल अस्मा। अब जरा इसको समझ लीजिए, लफ्ज़ इसम कहते हैं नाम को, नाम क्या होता है? नाम किसी सिफत, किसी खूबी, किसी चीज का नाम होता है, यानी जब हम आम कहते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आ जाती है, एक खास शक्ल आती है, एक खास रंग आता है, एक खास खुशबू या जो भी उसकी क्वालिटीज हैं वो सारी हमारे जहन में आ जाती हैं, हाँ या नहीं?
बिल्कुल सही है, ठीक है।
अब जब हम गौर व फिक्र करना सीखते हैं तो जो अल्लाह के अल्फाज हैं कुरान में, जब वो भी क्या हैं, चीजों के नाम ही हैं ना। अब अल्लाह ने जो भी नाम लिया अपना, हमने इसे मुख्तस कर दिया कि सिर्फ अल्लाह के नाम, नहीं, अल्लाह ने कहा दरिया तो दरिया एक नाम है। जब हम दरिया के लफ्ज़ पे गौर करते हैं और करते हैं और करते हैं और करते हैं तो हमें पता चलता है ये दरिया बना कैसे, तो वो पूरा पानी का सर्कल हमारे जहन में आएगा कि समुंदर से बुखारात उठे, हवा बुखारात को अपने दोष पे ले गई, कैसे ले गई, क्यों ले गई, वो एक पूरा निज़ाम काम कर रहा है, लहरें आपस में टकराती हैं, छोटे छोटे जर्रात बनते हैं और वो जर्रात में ऐसा कमाल होता है कि समुंदर की नमकीन ही शामिल नहीं होती, वहां से हवा उनको उठा के उड़ाती है, ले जाती है, वो बादलों की तरह ऊपर जाके ठंडे होते हैं तो वो जमा हो जाते हैं, वहां से वो पहाड़ों तक जाते हैं, वहां बरसते हैं, वो नदी नाले चश्मे झरने बहते हैं और फिर उसके बाद वो मिलकर एक दरिया बनते हैं, वो वापस समुंदर में आ जाता है। अब गौर देखें ना, हर हर अब पहाड़ कहा, हमने कभी गौर नहीं किया, हम सिर्फ सुन लेते हैं, हाँ जी ठीक है पहाड़, यही इल्मुल अस्मा है, यानी अल्लाह ने अपनी तमाम अल्लमल आदमा इस्मा कुल्लहा, ये कुल्लहा हर चीज की सिफात बता दी, ये सिफात का सारा रिकॉर्ड आपके अंदर पड़ा है, उसको एक्सप्लोर करने का एक ही तरीका है वो है गौर व फिक्र, और गौर व फिक्र का जो शौरी तरीका है वो तो आपको पता ही है, جو لاشعوری طریقہ ہے اسے مراقبہ کہتے ہیں. یعنی جب ہم ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں اور یہ خود ڈھونڈتا ہے, تجسس کی صفت اس کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے, یہ چاہتا ہے. بچہ کتنا متجسس ہوتا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, یہ کیسے ہے, وہ ہم اسے الٹے سیدھے جواب دے کے تو اس کو اپنے جیسا بنا لیتے ہیں, بجائے اس کے کہ اسے صحیح بات بتا کے اس کا ذہن ہم غور و فکر کی طرف لے جاتے. یہ پورے معاشرے میں یہی ہوا ہوا ہے. اسی لیے روحانی سلاسل وجود میں آتے ہیں کہ لوگوں کو غور و فکر کی طرف مائل کیا جائے. اسی لیے یہی سلسلہ عظیمیہ کی ایک مطلب خوبی ہے کہ یہ پہلے دن سے نہیں, سلسلے میں بیعت ہونے سے پہلے شرط لگاتا ہے کہ 3 مہینے نیلی روشنی کا مراقبہ کرو, یعنی نیلی روشنیوں پہ غور کرو. تو یہ سارا نظام غور و فکر سے, جب میں نے سلسلے میں داخل ہوا تو میں نے یہ سوال اس دن پوچھا کہ حضور یہ علم الاسماء کیا ہے, مجھے بھی بڑی جلدی تھی سیکھنے کی. تو حضور مرشد کریم نے کہا کہ آج تو آپ کو نرسری جماعت میں داخلہ ملا ہے اور آپ نے پی ایچ ڈی لیول کا سوال پوچھ لیا. اور پھر مسکرا کے کہا کہ یہ علوم کا ایک صندوق ہے, علوم کا ایک خزانہ ہے جو مراقبے کی چابی سے کھلتا ہے. غور کریں, پھر مراقبہ آ گیا. تو ایک طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اسم, کسی بھی چیز کے نام پہ غور کرتے ہوئے اس پہ تفکر کریں اور غور کرتے جائیں تو حقائق کھلیں گے. کیونکہ یہ علم اللہ نے انسان کو سکھایا, آدم کو سکھایا, اور یہ انسان کے اندر آدم کی اولاد ہونے کے ناطے یہ ریکارڈ منتقل تو ہو گیا. اب اس نے اس کو ایکسپلور کرنا ہے, اس کو خود دریافت کرنا ہے, اور وہ غور و فکر سے ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, یہ سونا نہیں کہلاتا, اسے غنود کہتے ہیں. دیکھیں یہ اس کیفیت سے گھبرانا نہیں, آپ اسی کیفیت میں رہیں حتیٰ کہ اس سے پیٹ بھر جائے گا, پھر آپ غنود سے ورود میں منتقل ہو جائیں گے, پھر اس کے بعد شہود شروع ہوگا, پھر مراقبہ شروع ہوگا. آپ اسے جاری تو رہنے دیں. آپ ذرا سا ہوتا ہے تو گھبرا کے توڑ دیتے ہیں کہ وہ مجھے تو نیند آ گئی. نہیں, وہ نیند کی کیفیت طاری ہو رہی ہے, خواب کے حواس طاری ہونے لگتے ہیں, آپ توڑ دیتے ہیں سلسلہ. یہ نہ کیا کریں بھائی. اگر نیند آ گئی, آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے سو گئے نا, تو سو جائیں, کیا حرج ہے, پڑے رہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بے خیالی میں رہیں, وہ لاشعور کام کرتا رہے گا نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, جتنی پابندی کر سکیں کریں, جب نہ ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی نماز تھوڑی ہے کہ قضا ہو جائے گی. میں نے تو عرض کیا نا کہ یہ تو چلتے پھرتے, آپ کھانا پکا رہی ہیں, چمچ ہنڈیا میں چل رہا ہے اور سوچ ابا کی باتیں رہی ہیں, تو کیا ہوا, یہ مراقبہ ہی تو ہو گیا. آپ کپڑے دھو رہی ہیں, مشین چل رہی ہے, وہ چکر کھا رہی ہے, آپ کے ذہن میں ابا چکر آ رہے ہیں, غور کریں. یہی تو کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. یعنی کہ اپنے ابا 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 کیوں نہیں آتی.
سر یہ جو آپ نے تصور شیخ کا جو ہے طریقہ بتایا ہے
ارشاد,
اس کا جو ہے وہ آپ نے بتایا تھا بعض لوگوں کو بد ہضمی ہو جاتی ہے, اس کا ساتھ حوالہ دے دیا کریں, وہ کتاب مراقبہ میں بجانے
कोई बात नहीं, जिनको बदअज़मी होगी उनके लिए हजमूला है मेरे पास। डोंट वरी, ये इरफान भाई बड़ी सिंपल सी बात है, जब तक आप गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। आप करें तो सही, ये जो हमारे अंदर फांसे पड़ी हुई है ना कि ये नहीं गलत ना हो जाए, ओ हो जाने दो यार, क्या है। अब बच्चा साइकिल चलाना सीखता कितनी दफा गिरता है, अगर वो गिरने से डरता रहेगा चला लेगा? बस यही कानून यहाँ पे भी है। आप एक काम करें, करते चले जाएं, कब तक नहीं होगा, आप करते रहेंगे जिद में आ जाएं कि मैंने करके छोड़ना है, ये होता कैसे नहीं है, मजाला उसकी ना हो, ये है हाजमूला।
नहीं माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा जो है ये तरीका बताया है, तसव्वुर शेफ चलते फिरते काम करते जो उनका तसव्वुर है कि वो कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना सहूलत आसानी, देखे ना हम लोगों को ये जो रस्में है ना, रस्मों ने मारा हुआ है। आपको सुन के हैरत होगी, हजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने सारी रस्मों को तोड़ा।
जी बिल्कुल,
हमने उन्हीं की बातों को रस्में बना दिया, ये तो हमने कमाल किया।
ऐसे ही सर,
वो दुनिया के सबसे बड़े एंटी क्लैरिक थे, एंटी क्लैरिक। हाँ या नहीं भाई, मजहबी पेशवाइयत पे सबसे बड़ी कारी ज़र्ब हजूर ने लगाई और हमने क्या किया, हमने उन्हीं की बातों को रस्में बना दिया। भाई देखे ना, बेसिकली बात है गौर व फिक्र की, उससे इस कौम को बाज रखने के लिए हमने कितने ड्रामे किए। ज्यादा सोचने से बंदा पागल हो जाता है, ज्यादा सोचने से बंदा गुमराह हो जाता है। ये जुमले सुने मैंने, मैंने कहा यार मैं पहले कौन सा रास्ते पे हूं कि मैं गुमराह हो जाऊंगा, मैं पहले बेचारा राह ढूंढ रहा हूं, हैं? शायद गौर व फिक्र करने से मिल जाए, मैं तो इसलिए करता रहा। ठीक हो गया ना? इरशाद
सर, वो हदीस है ना कि मैं वक्त में अल्लाह के साथ हूँ, मेरे खास रसूल की हदीस है
जी, ली मा अल्लाह है वक्त
जी। तो सर वो नफ़ाक़ रसूल की पैदाइश तो बहुत बाद में हुई थी, दुनिया यानी बनने से पहले बहुत बाद में, तो क्या वो
इसके लिए जी जी मैं अर्ज कर देता हूँ इसका, इसको समझ लें। बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने पूछी। देखें हम जब इस मादी जोन के शऊर से बात को समझना चाहेंगे तो ये नहीं समझ आएगी, ठीक है। अब मैं अर्ज करता हूँ कि पहले तो आपको वक्त का पता नहीं है कि वक्त कैसे कहते किसे है ना। देखें अल्लाह ने एक प्रोग्राम तश्कील दिया पूरी कायनात का, पूरी कायनाती प्रोग्राम तश्कील दिया, वो पूरी कायनातें पता नहीं कितनी कायनातें, उन सारों का एक वक्त है। वो अल्लाह के, वो अल्लाह का अपॉइंटेड टाइम जो है उसको दहर कहा है कुरान में। ये जो हमारी कायनात है ये उस दहर का एक जुज्व है। क्या? उस दहर का एक जुज्व ये कायनात है। इस पूरी कायनात के अजल से अब तक का वक्त जो है इसको वक्त कहा है। अब इस कायनात में नौए हैं, मसलन जमीन एक नौ है, पहाड़ एक नौ है, कुत्ता एक नौ है, आम एक नौ है, सेब एक नौ है, इंसान एक नौ है, कुत्ता एक नौ है, चूहा एक नौए, इन अनवा के मजमुए का नाम है कायनात। नौ के टाइम को अल्लाह ने असर कहा है, और इंसान का ये जो एक फर्द है, यानी जैसे मैं हूं या आप हैं, तो हमारी पैदाइश से लेकर मौत तक का वक्त हीन कहलाता है। कुरान ने वक्त के लिए चार लफ्ज इस्तेमाल किए हैं। अब हजूर अलैहिस्सलाम ये बता रहे हैं कि अल्लाह रब्बे करीम ने जब कायनात बनाई तो मुझे बनाया और मेरे जिम्मे ये मिशन उसी वक्त असाइन कर दिया गया, इसीलिए उन्हें रहमतुल आलमीन कहते हैं। तो ये जो वक्त के दर्जात हैं, इनको समझने के लिए, इनका शऊर हासिल करने के लिए हजूर कलंदर बाबौलिया ने किताब लिखी है लौहो कलम। जब हम इस लौहो कलम को पढ़ेंगे तो हमारा वो जहन बनेगा जिससे हमें कुरान समझ आएगा। कुरान क्या है? कुरान वही है। जब हम वही को वही की तर्जों में समझना सीखेंगे तो हमें अल्लाह की बात उस तरह समझ आएगी जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है। आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं? यानी ये जो सफर है ये मुराकबे से शुरू हुआ, साथ साथ आप मुतालिया करेंगे लौह कलम का, जब वो पूरा कर लेंगे, छः महीने में करते हैं, साल में करते हैं, दो दिन में करते हैं, दस दिन में करते हैं, दस साल में करते हैं, अप टू यू। जब वो जहन बन जाएगा तो फिर आपको कुरान उस तरह समझ आएगा जिस तरह अल्लाह समझाना चाहता है, और जब अल्लाह आपको कुरान समझाएगा तो फिर आप अल्लाह के साथ होंगे या नहीं होंगे? तभी तो आप खलीफतुल्लाह का फराइज अंजाम दे सकेंगे ना। देखे ना, अगर मैं एक डिपार्टमेंट में काम करना चाहता हूँ, एक फैक्ट्री में काम करना चाहता हूँ, तो मेरी उसके मालिक से आशनाई नहीं है, वो मुझे नौकर रखेगा? मेरा उसका जहन ही नहीं मिलता, वो मुझे अपने यहाँ क्यों नौकरी देगा? हाँ या नहीं? तो हमें ये तय करना है कि हम अल्लाह ने हमें किस मकसद के लिए तख्लीक की है। अल्लाह ने हमें अपनी नियाबत के लिए तख्लीक की है, हम उसके अहल बनना चाहते हैं। पहली बात चाहते हैं तो जाहिर है कि वो प्राइमरी करेंगे, मैट्रिक करेंगे, एफए करेंगे, बीए करेंगे, मास्टर करेंगे या एलएलबी करेंगे, जो भी कानून पढ़ना है वो पढ़ेंगे, तभी जाके हमें वो जॉब ट्रेनिंग मिलेगी ना। क्यों जी? तो ये बात समझ आ गई कि वक्त जो है ये असल में शऊर के तीसरे दर्जे का की बात हो रही है। हम जिस शऊर में, इसे शऊर चहारम कहते हैं, हम चौथे शऊर पे हैं। अभी तो हमने तीसरे दर्जे का शऊर हासिल करना है, यानी नोई शऊर। फिर जब हम कायनाती शऊर हासिल करेंगे तब हमें पता चलेगा वक्त क्या है। फिर जब वराए कायनाती शऊर हासिल करेंगे, यानी अल्लाह के जहन को समझेंगे, तो उसे कहते हैं शऊर अव्वल। तो ये शऊर के चार दर्जे हैं। अब देखे ना, आपने ली माल्ला वक्तुन हदीस है, हजूर ने कितना बड़ा राज आश्कारा किया, लेकिन समझा कौन? हजूर कलंदर बाबौलिया ने समझा बात को, उन्होंने बताया, आगे वो बात फैल रही है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया
जी सर। सर एक और सवाल मेरे दिल में बड़े दिनों से अटका हुआ है।
इरशाद,
जैसे सर एक प्रिज्म होता है, उसमें से रोशनी गुजरती है तो आगे रंग बनते हैं, ऐसे ही जब कोसे गजा बनती है, बारिश के कतरे में से गुजरती है तो वो कुसुक गुजा बनती है, रोशनी सूरज की रोशनी जब बारिश के कतरे पे पड़ती है तो कुसुक गुजा बनती है।
बिल्कुल सर।
जब हम बड़ाए रंग, बेरंग, जग रंग, उस जिस रंग में आते हैं तो इधर क्या चीज प्रिज्म बनती है?
इधर आपके बॉडी के सेल्स जो है ना, उसमें एक चीज है साइटोप्लाज्म। बॉडी सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म क्या काम करता है? साइटोप्लाज्म जो है वो असल में यही प्रिज्म का काम कर रहा है, वो शफाफ माया है, वरना उसका क्या फंक्शन है? सेल वॉल से लेके न्यूक्लियस तक साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये साइटोप्लाज्म किस लिए किसी को नहीं पता, बस ये है कि जी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अंदर वैक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर फूड पार्टिकल जो है वो मरकज तक जाते हैं, न्यूक्लियस तक, हमें ये पता है। साइटोप्लाज्म जो है वो वही काम करता है जो प्रिज्म करता है, बादलों में जो बारिश के कतरे, पानी के कतरे जो काम करते हैं, वही हमारे जिस्म में साइटोप्लाज्म काम करता है, और इसी के वजह से हमारे गिर्द रोशनियों का एक हाला बनता है, रंगों का। वो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसियों की वजह से पूरा एक दायरा बनता है जो आपके जिस्म से तकरीबन 9 इंच के फासले पे होता है, उसी को नस्मा कहते हैं। या ऑरा कहते हैं। बिठाए ना, ठीक हो गया जी? वैसे मैं एक बात आपको बताऊं, हजूर मुर्शिदे करीम ने एक मिसाल दी थी एक आज की बात में कि इंसानी जहन जो है ये भी प्रिज्म का काम कर रहा है। ये जो हम बात को, इत्तला को फाड़ देते हैं, रंगों में डिस्पर्स कर देते हैं, ये हमारा जहन कर रहा है। यानी मादी शक्ल में साइटोप्लाज्म काम कर रहा है और गैर मरई शक्ल में जहन जो है ये प्रिज्म का काम कर रहा है। जी ठीक हो गया? काफी है मेरा ख्याल है आज के लिए, या है कोई सवाल और? बिल्कुल सही। अच्छा ये एक मशवरा है सबके लिए कि आप प्लीज ये मकतूबे ग्रामी किताब, तस्करा कलंदर बाब औलिया में ये खत लिखा हुआ है, इसे पढ़ें और अपने हाथ से लिखें। इस हाथ, अपने हाथ से लिख के इसको बार बार पढ़ें तो आपका जहन जो है ना उसकी मतलब रूहानी बुनियादें पड़ जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह खुश रखे जी, बस फिर और क्या चाहिए। देखे ना उसमें कैसे कैसे, इसीलिए तो ऐसे अच्छे अच्छे सवाल पूछ रही हैं आप। माशाल्लाह जहन चल रहा है ना, यानी जहन में तजस्सुस बेदार हुआ।
सर आपकी बहुत मेहरबानी है।
आप असल में मुशाहिदा कहते किसे, बात समझ आने को मुशाहिदा कहते। ये जो देखने का चक्कर है ना इससे निकले, देखना नहीं है, बात को समझ आना मुशाहिदा है। देखे ना मैंने बातें की, आपके जहन में पूरी कायनात भी आई, नोए भी आई, फर्द भी आया, वक्त भी आया, असर भी आया, आया कि नहीं आया? ये गौर व फिक्र करने के नतीजे में, इसी को मुशाहिदा कहते हैं। हम पता नहीं क्या आंखों से देखने को मुशाहिदा मानते हैं। यहां से देखे ना हमारे बने हुए तसव्वुरात बहुत बिगड़े हुए हैं ना, उनको सीधा करना है। बात समझ में आ जाए तो समझें कि मुशाहिदा हो गया।
तो
जाहिर है, अब आप सोचें, आप देखें ना, जरा सा आप सोचें, तो आपके जेहन में दरिया की कोई शक्ल तो आएगी ना। अब जब आप इस पे मजीद गौर करेंगे, जैसे मैंने अर्ज किया कि भी दरिया बनता कैसे, सवाल है ना, दरिया बनता कैसे, जब आप इसका जवाब सोचेंगे तो आपके जेहन में तस्वीरें चलेंगी। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि लहरें टकराती हैं तो क्या होता है, झाग बनती है, उसके जरा जर्रे छोटे छोटे पानी के जर्रात, वो हवा चलती है, वो हवा के दोष पे उड़ना शुरू हो जाते हैं और वो बादलों तक पहुंच जाते हैं। तो ये सारा मंजर क्या मैंने सोचने से देखा एक तरह का, बस इसी को मुशाहिदा कहते हैं।
आप लोगों कलम में लंदन टावर की मिसाल और नजर नातवानी?
नहीं, वो और चीज है, वो जो है वो निगाह की नातवानी के हवाले से है कि आप जो भी इमेजिन करते हैं उसकी तस्वीर बनती है। ठीक हो गया, चले मेरा ख्याल है काफी हो गया, रहती है बात। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।